اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. مرکز تصوف آستانہ اقدس سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی قدوس سرہ العزیز بحرولی نئی دہلی سے تصوف کا یہ خادم صوفی غیاث الدین آپ کی خدمت میں پھر سے آپ کی علمانہ خدمت کے لیے حاضر ہے. آج کی ہماری بات چیت کا عنوان ہے بول. ویسے میں نے کئی سال پہلے اتفاق ہوا ایک پاکستانی فلم دیکھنے کا, بول, اس کا نام بھی بول تھا. بڑی پیاری فلم ہے, یقیناً آپ سب لوگوں کو دیکھنی چاہیے. پاکستانی فلم بول, بہترین فلم, بہترین. غلام یہ کوشش کرے گا کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو کچھ بہترین کتابیں بھی سجیسٹ کرتا رہے, اسی طریقے سے جس طریقے سے آج ایک فلم بول سجیسٹ کری. اور آج کی بات چیت کا عنوان بھی ہے بول. آپ سمجھتے ہوں گے بول جو بولا جا رہا ہے, زبان سے جو نکلتا ہے وہ بول ہے, سب بول ہے. بول کے بارے میں, زبان کے بارے میں, زبان سے جو بول نکلتے ہیں اس کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا گیا اور بزرگوں نے کیا فرمایا اور اس کے پیچھے کیا مشیت تھی, بول کیسے نکلتے ہیں, ہم آج اس بارے میں بات چیت کریں گے. بول دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے, ایک آواز, ایک الفاظ. یہ الفاظ ہے, اس میں آواز نہیں ہے. اور جب اس کے اندر آواز جڑ جاتی ہے یا کسی ہوئی کسی بھی لکھے ہوئے الفاظوں کو آواز مل جاتی ہے تو وہ بول بنتے ہیں. ایک ماؤتھ آرگن آتا ہے, ایک انسٹرومنٹ ہے میوزک کا. تو دراصل ماؤتھ آرگن تو ایک الگ چیز ہے. اگر ماؤتھ کو ایک آرگن مان لیا جائے تو ہم جو بھی بولتے ہیں تو ہماری زبان یعنی الف ہمارے ماؤتھ کے اندر الگ الگ جگہ پر ہماری زبان ٹکراتی ہے. کبھی دانتوں کے اوپر اندر کے حصے میں, کبھی دانتوں کے نیچے اندر حصے میں, کبھی تالو پر. یعنی ایک بھی الفاظ بولا جائے, الف آ لی ف ف ف, تو ہونٹوں سے دانت ٹکراتے ہیں. یعنی یہ غلام کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ بولتے وقت ہمارے منہ کے اندر الگ الگ جگہ زبان ٹکراتی ہے اور اس سے الگ الگ آواز نکلتی ہے, जो अल्फाजों को पूरा करके हमारे सामने लाती है। बोल नाजुक चीज है। बोल जो आप बोलते हैं वो दूसरा चाहे तवज्जो देकर सुने या ना सुने, लेकिन आपके अपने कानों में तो वो पड़ता ही है। जो मैं बोल रहा हूं वो कम से कम चाहे आप समझ पाएं, सुन पाएं, ना सुन पाएं, लेकिन कम से कम मेरे कानों में तो वो जा रहा है। इसलिए कुरान में और इल्मे बातिन के जितने भी आरिफ हुए हैं उन लोगों ने बोल के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है। हम पहले कुरान से, उसके बाद और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि बुरा बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, वाहियात बोलना, और आयत भी है इस बारे में कि वाहियात बोलना हराम है, सख्त हराम है। तो हम आयत को समझने की कोशिश करते हैं और इस उम्मीद के साथ करते हैं कि हम इस बातचीत को, इस बातचीत का मकसद पूरा करने के लिए अपने बोलों पर, अपनी ज़ुबान पर, अपने बोल पर आज के बाद सोच समझ कर ही बोलेंगे, कम बोलेंगे, आहिस्ता बोलेंगे, सोच समझ के बोलेंगे। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 11। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत फैलाओ, तो कहते हैं हम तो सुधार कर रहे हैं, खबरदार बेशक यही फसाद करने वाले हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 11। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत फैलाओ, तो कहते हैं हम तो सुधार कर रहे हैं, खबरदार बेशक यही फसाद करने वाले हैं। अब आपने कभी, एक तो हमारी मुश्किल बहुत है कि हमने अरबी का, जैसे अरबी को अल्लाह की ज़ुबान समझ लिया। यार अरबी अरब की ज़ुबान है, अल्लाह की ज़ुबान कहाँ है? अल्लाह की ज़ुबान जज्बात है भाई, अल्लाह की ज़ुबान जज्बात है। बहरहाल ये जो है, जब उनसे कहा जाता है ज़मीन में फसाद मत फैलाओ, ये फसाद किस चीज़ से फैलता है? हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे शहर में फसाद अगर फैलता है तो उसकी जड़ में क्या होता है? बोल, क्या आप इससे इनकार कर पाएंगे? इससे ये कहना, मियाँ वो तो ये कह रहा था, और उससे ये कहना, मियाँ वो तो ये कह रहा था, और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो बारी ताला ने उनकी तरफ इशारा करके सूरह बकरा आयत नंबर 11 में ये फरमाया है कि अपने बोल का, जो आप बोलते हैं उसके ज़रिए कहीं फसाद ना फैल जाए, और जो फसाद फैलाते हैं यकीनन वो अपनी ज़ुबान का, अपने बोल का गलत इस्तेमाल करते हैं। और आयत सुनिए। पहली आयत में हमने समझा कि फसाद ज़ुबान से, ज़्यादा बोलने से, फालतू बोलने से, बिना सोचे समझे बोलने से, खामखा बोलने से पैदा होता है। ठीक, अब हम और आयत समझते हैं। कलाम अल्लाह की एक और आयत है, अलफितनतो अकबरो मिनल कत्ल। फितना फैलाना कत्ल से बड़ा गुनाह है। अब फितना और फसाद में क्या फर्क है? फितना फैलाना कत्ल से बड़ा गुनाह है, फसाद बड़ा रूप, फितना छोटा रूप। जो हम आपस में 5, 7, 10, 20 आदमियों में फैलाते हैं वो फितना है, और जब वो बड़ा बन जाता है, इसीलिए तो दंगा फसाद कहा जाता है। फसाद के पीछे तकरीरें, भड़काऊ तकरीरें नहीं हैं, और भड़काऊ तकरीरों में अगर बोल नहीं है भड़काऊ नफरत भरे तो और क्या है। अब वो चाहे कोई भी बोल रहा हो, चाहे लफ्जों का उसे कितना अच्छा इस्तेमाल करना आता हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? वजह तो उसके बोल फसाद फैलाने वाले हो रहे हैं। अल फितनतो अकबरो मिनल कत्ल, फितना फैलाना कत्ल से बड़ा गुनाह है। अब देखिए कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है। बारी ताला ने कुरान में ये फरमाया कि फितना फैलाना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। तो इस तरीके से तो हम में से ना जाने कितने लोग रोजाना ना जाने कितने कत्ल कर रहे हैं और हमें मालूम भी नहीं। हम बसों में फितना फैला रहे हैं, हम ट्रेन में फितना फैला रहे हैं, कुछ भी हम बोले जाते हैं और कत्ल का गुनाह अपने ऊपर लिए जाते हैं। अब तीसरी आयत, ये आयत भी सूरह बकरा की है, आयत नंबर 263 सूरह बकरा। मुनासिब बात कहना और दरगुजर करना, टाल देना बात को। मुनासिब बात कहना और दरगुजर करना ऐसी खैरात से कि जो आप खैरात करते हैं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का कि जो इस हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ को पता नहीं चलता, और उनका भी शुक्रिया कि जो जता जता कर देते हैं। मुनासिब बात कहना और दरगुजर करना ऐसी खैरात से बेहतर है जिसके बाद नुकसान पहुंचाया जाए। आयत नंबर 263 सूरह बकरा। नुकसान पहुंचाने से मकसद ये है कि अगर आपने खैरात करी और उसे ज़ुबानी तौर पर भी उस पर ज़ुल्म कर दिया खैरात लेने वाले पर, तो उससे ज़्यादा बेहतर है मुनासिब बात कहना और दरगुजर कर देना, यानी बुरी बातों को, तकलीफ दे बातों को टाल देना, दरगुजर कर देना, उसे आगे नहीं बढ़ाना, सख्त जवाब नहीं देना। एक और आयत देखते हैं, ये है आयत नंबर 34 सूरा है हामीम सज्जती पारा 24। आप अच्छे बर्ताव से टाल दिया करें। बारी ताला सरकारे दो आलम से फरमा रहा है और सरकारे दो आलम के जरिए हम तक ये पहुंच रहा है, हमें ये हुक्म दिया गया है कि आप अच्छे बर्ताव से टाल दिया करें। फिर यकायक आप में और जिस शख्स में दुश्मनी थी वो ऐसा दोस्त हो जाएगा जैसा दिली दोस्त होता है। इस आयत से हम बोलने की, बोल की बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो समझ सकते हैं। आप अच्छे बर्ताव से टाल दिया करें, यानी अगर आपसे कोई बुरी कड़वी सख्त बात बोल रहा है, ये सीधा सीधा मुहकमात आयत में आती है ये बात, यानी ये बारी ताला का हुक्म है। आप इसको दरगुजर कर रहे हैं तो गलत है ये बात, अगर आप इसे टाल रहे हैं तो। आप अच्छे बर्ताव से टाल दिया करें, फिर यकायक आप में और जिस शख्स में दुश्मनी थी वो ऐसा दोस्त हो जाएगा, यानी बारी ताला उसको अपने आप तौबा की तौफीक अता करेगा और वो ऐसा दोस्त हो जाएगा जैसा दिल ही दोस्त होता है। इस आयत का मफहूम ये निकला कि जो हमसे बुरी कड़वी सख्त बात कर रहा है आप उसे टाल दें, मुस्कुरा के टाल दें। फिर ये बारी ताला का हुक्म है कि फिर वो आपका दिली दोस्त बन जाएगा। इन आयतों को जो इस तसव्वुफ़ के खादिम ने आपके सामने पेश करी, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि आप और हम सबको बारी ताला तौफीक अता फरमाए, हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि बोलना कितना फायदेमंद और कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आप एक रियाजत है उसके बारे में भी बात करते चलते हैं, और बड़ी छोटी सी रियाजत है, 4 घंटे 5 घंटे 1 घंटे या 24 घंटे, आप अपने ऊपर गौर कीजिए कि अगर क्या मैं ये बात नहीं बोलता तो क्या काम नहीं चलता। आप महसूस करेंगे खुद कि हम सब दिन भर फालतू बोलते हैं, हम 90% 1 रुपए में 90 पैसे तक हम फालतू बोलते हैं, अगर हम वो ना बोलते तो भी काम चल जाता। दरअसल जो लोग बोले वो तो हमारे और आपके लिए बोले, जिनके बोल को इकट्ठा किया गया वो हमारे और आपके फायदे के लिए इकट्ठा किया गया, हमारी और आपकी रूहानी तरक्की के लिए इकट्ठा किया गया। कुछ और हवाले समझ लेते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, दोहा है, औरों को शीतल करे आप हू शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसा बोलो कि मन का आपा खो जाए। अब ये जो है ना, मन का आपा खो जाए, ये बहुत कीमती बात है। मन बहुत चंचल है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। हम दरअसल ये समझते ही नहीं कि मन क्या है, दिल क्या है, कल्ब क्या है, दरअसल हमें ये मालूम ही नहीं है। हम तो बस ऐसे ही हाँके जाते हैं जो मर्जी। मन का आपा खोए, जो मन का आपा है, मन का अपना होना है, मन का अपना होना है, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का अपना होना है, मन का जो तकब्बुर है कि मैं हूं वो खो जाए। औरों को शीतल करे, लफ्ज शीतल है, ठंडा करे, औरों को शीतल करे आपहू शीतल होए, दूसरे को भी ठंडक पहुंचाए, तसल्ली पहुंचाए, खुद को भी तसल्ली और ठंडक पहुंचाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक, निंदा, बुराई करने वाला, नियरे राखिए नजदीक रखिए, आंगन में कुटी, उसकी कुटिया डालकर, बिन साबुन बिन जल बिना निर्मल करे सोहाए, वो साबुन और पानी के बिना आपको साफ करेगा। आज की हमारी बातचीत बोल पे थी कि हम क्या बोलें, कब बोलें, कैसे बोलें, कम बोलें। मरकज़ तसव्वुफ़ की शुरू से ये तालीम रही है कि कम बोलना बेहतर है, क्योंकि जब हम कम बोलते हैं तो हमारी कुछ दूसरी सेंसेस जो हैं वो काम करने लगती हैं। इस बारे में आगे हम बातचीत करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस दुआ के साथ कि मौला बारिये ताला हम सब को कम बोलने और अच्छा बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।